آ جاؤ بنا لائن ادھر ہو جاؤ، جو اور آئیں گے لیٹ وہ ادھر بیٹھ جائیں گے، ادھر کو جاؤ. تو کل بابا کیسا لگا آپ سب کو؟ بہت اچھا لگا بابا. اچھا بمبے میں پلے پارلے والے کہہ رہے تھے ہم یہاں کیسے آ گئے، بھگوان ہمارے گھر آیا ہم اس کے گھر آ گئے. بلے پالنے کے بہت تھے نا لوگ. تو یہ سب پربھو لیلا چل رہی ہے، اب اس کو اتنی ہی گہرائی سے سمجھتے بھی چلنا ہے اور ہر سین کا آنند لینا ہے. کل آپ سب نے محسوس کیا ہوگا، آپ تو یہیں تھے نا اوپر ہی، بہت اوپر ہی تھے نا. تھوڑی دیر بابا کو دیکھ کر بھی سبھی بہت ہوئے یا نہیں؟ نیچے ہم دیکھتے تھے لہر بدل گئی ایک دم، اتنے بھائی بہنیں 25,000 تھے، ٹوٹل لہر بدل گئی. جب آ رہے تھے تو لہر نہیں تھی، ہر بار تو کیا ہوتا تھا 3 بجے سے بھاگ دوڑ، اور اس بار لوگ آرام سے 5 بجے تک آ رہے، آرام سے چلیں گے کوئی بات نہیں، بابا تو آئے گا نہیں. لیکن اب جیسے جیسے یہ پاٹھ سوکشم ہوتے جا رہے ہیں، ایک وشیش وردان بابا اپنے تینوں استھانوں کو دے دے گا. کون سا بتاؤ؟ یہاں آ کر ہی سب بابا کی اپستھتی کو محسوس کریں گے. وہ آئے یا نہ آئے، جو یہاں آئیں گے انہیں محسوس ہوگا کہ یہاں بابا تو ہے. یہ ایک نئی چیز پرارمبھ ہو جائے گی. تو بابا نے کل 3 چیزیں جو یاد دلائی ان پہ ہی چرچا کر لیتے ہیں. کہنا تو بابا بہت کچھ چاہتا تھا، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، پر جیسا ہر بار ہوتا ہے نہیں بولا بابا نے. کون سی 3 چیزیں بولو؟ وہی سب سب دیے نہیں تھے، ایک آتمک سوروپ، دوسرا برہمن سوروپ، تیسرا دیو سوروپ، بھوی سوروپ. برہمن سوروپ کے لیے کیا کہا بولو بولو، یاد کرو. بہت مہان ہے سنگم یوگ بھی اور ہم بھی بہت بھاگیوان ہیں. تو اب ہم اس پہ چرچا کر لیتے ہیں ذرا. بھوش بھی ہمارا بہت مہان اور ورتمان بھی ہمارا بہت مہان. ہم مہان آتمائیں، کیسے ہم اپنے سنگم یوگی جیون کو مہان بنائیں اور اس جیون کی کیا کیا وشیشتائیں ہیں؟ کیونکہ کئی بابا کے بچے بننے کے بعد اپنے کو سادھارن محسوس کرتے ہیں. یمایا سے یدھ کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے بولو؟ یہ آپ کو بولنا. مایا سے یدھ کرتے کرتے کوئی تھک جاتے ہیں، کوئی نراش رہتے ہیں، کوئی سوچتے بھگوان تو ملا یہ تو بہت اچھی بات، پر آگے بڑا مشکل ہو گیا. اگر وہ مل کے ہی چھوڑ دیتا تو کافی ٹھیک تھا، پر اس نے ملنے کے بعد بہت کام دے دیے، اب یہ مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہو گیا ہے نہیں، کیونکہ جس نے ہمیں جو کام دیا ہے اسے کرنے کی سامرتھ بھی دے دی ہے. یہ سب کو میں جان لینا ہے اور سویکار کر لینا ہے. جیسے آپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو وہ کام نہیں دیں گے جو وہ کر ہی نہ سکے، بابا بھی اپنے بچوں کو وہی کام دیتا ہے جو کیا جا سکتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے ان سے نہیں ہوگا تو اپنی شکتیاں دے دیتا ہے. ہم اس ستیہ کو سویکار کریں سبھی کہ برہمن بنتے ہی बाबा की शक्तियां हमारे साथ हो गई। इसलिए कौन सा बहुत अच्छा नशा हो, मैं विजयी रतन हूं। सभी चलें इस गुह्यता में। कल्प कल्प हमने माया को जीता है। संगम युग की चर्चा हम करेंगे। हम इस अप्स एंड डाउन्स में नहीं रहेंगे, उतार चढ़ाव में नहीं, आशा और निराशा के चक्र व्यूह में नहीं। हम विजयी हैं करके देखेंगे इसका अभ्यास, कि इसके अभ्यास से हमारी विजय की शक्तियां जागृत होती हैं। वो शक्तियां हमारे पास हैं, वो बाबा ने हमें दे दी हैं, पर जब हम उन्हें यूज करते हैं तभी वो एक्टिव होती है ना। आपके पास कोई अच्छी चीज हो लेकिन आपने बंद करके रखी हो, तो ये भी संभव है जब आप उसे चलाओ वो चले ही नहीं, चंक लग गया हो। हम यूज करते हैं तो चीजें एक्टिव रहती हैं। शक्तियों को भी हम इस तरह यूज करते हैं तो वो एक्टिव रहती हैं। तो उनको यूज करने का ये सुंदर संकल्प है। हम कल्प कल्प के बोलो हैं या नहीं, या केवल 108 विजयी हैं? हैं? बाबा ने तो ये नहीं कहा ना कि 108 कल्प कल्प के विजयी हैं, बाकी तुम सब हारे हुए हो, नहीं कहा ना। सबको कहा याद करो, तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है। सभी इस उमंग उत्साह में आ जाएं कि ये जो माया है चाहे वो कितनी भी प्रबल है, पर हारी की हारी, नष्ट हुई की हुई, हमारे जीत के दिन आए की आए, ये नशा विजय की शक्तियों को जागृत कर देगा और बहुत सहज होगा। जो ये सोचते हो हम क्रोध को नहीं जीत सकते, कोई संकल्प को आज चेंज कर दो। क्या सोचेंगे? इस क्रोध को कितनी बार जीता है, कितनी बार जीता है माताओं ने? अनंत बार जीता है ना। चलो उस अनंत में से 10-20 हजार बार कर लें, कितनी बार तो जीता है ना। 10-20 हजार कितनी बड़ी संख्या है, कहने में तो 10-20 है लेकिन बहुत बड़ी संख्या है ना। तो जो काम हमने 10 बार भी कर लिया हो उसको दोबारा करना कठिन होता है? बिल्कुल कठिन नहीं होता। लाइट चली जाए और हम एक रास्ते से 100 बार गुजरे हैं, अंधेरे में भी चलते जाएंगे। हमारे कदमों को पता होता है रास्ता किधर है। हमने जीता है, इस स्मृति को जागृत करके देखो। सवेरे उठते ही अपने ब्राह्मण स्वरूप के कुछ स्वमान रोज याद करेंगे। पहला नहीं, उससे पहले एक, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। बोलो तुम सबसे छोटे, ठीक है? देव कुल की महान आत्मा है। छोटे बच्चे बनकर कईयों के घरों में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे कि जन्म लिया 2-4 मास के बाद 4 बजे सवेरे रोने लगते हैं। जब तक माँ उन्हें गोद में ले के बाहर न घूमे 4:45 बजे तक, वो न खुद सोएंगे न सोने देंगे। 4:45 नींद आने लगेगी, सो जाएंगे। तुम भी सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। ये आत्माएं देवकुल की है, ये बहुत जगह हो रहा है। देवकुल की आत्माएं बता रहे थे आज ही मुझे, छोटे बच्चे बुलाए कि जैसे पीस ऑफ माइंड चलता है ये उछलने लगता है, एकदम उछलने लगता है आनंदित। इनका देख के आया होगा ना 1-2 साल, तो उसको उमंग हो रहा है बहुत। ये सब देव कुल की महान आत्माएं। कौन है हम सब? तो क्या है हमारे अंदर? देवत्व। केवल देवी गुण नहीं, संपूर्ण देवत्व है। देवत्व में प्योरिटी भी आ गई, दिव्यता आ गई। बुद्धि बहुत श्रेष्ठ, गुण तो है ही, बुद्धि बहुत डिवाइन श्रेष्ठ, बहुत अच्छी प्योरिटी, बुद्धि बिल्कुल क्लियर स्वच्छ, देवत्व से भरपूर, पुण्य कर्मों का संस्कार हमारे अंदर है। देखो देवकुल की आत्माओं को तब बहुत टेंशन हो जाता है अगर वो कुछ पाप कर दें। दूसरे लोग पाप करके आनंद मनाते हैं और देवकुल की आत्माएं अगर पाप करेंगी तो रात को नींद नहीं आएगी। क्यों? देवत्व है, वो देवत्व स्वीकार ही नहीं करता कि तुम पाप करो, रिजेक्ट कर रहा है। इसलिए कोई भी गलती होने से मन बेचैन हो जाएगा। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, संपूर्ण देवत्व से भरपूर। सवेरे याद करेंगे, सवेरे के समय को सुंदर करने के ये तरीके। दूसरा सुंदर संकल्प, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। कितने भाग्यवान, कितने? अब अपने भाग्य को गिनेंगे जरा। आंख खुलती है तो क्या होता है? याद तो शायद दुनिया करती है, इसने ठीक बोला। आंख खुलती है तो, अरे नहीं, आंख खुलती है तो क्या मिलता है? माताओं को नहीं मिलता। आंख खुलती है तो भगवान मिलता है। दुनिया में किसी का ऐसा भाग्य है कि आंख खुले और भगवान मिले? इसी की यादगार में भारत में घर घर में मंदिर बनते थे ताकि आंख खुले और जाओ मिलके आओ दर्शन करो। यहीं से प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमारी आंख खुलती है और सामने कौन खड़ा होता है? कवि बाबा ने एक शब्द और जोड़ा था, आंख खुली देखा सामने बूढ़ा बाबा खड़ा है। बाबा ने बोला था यहीं बैठकर, माना ब्रह्मा बाबा और उनके तन में शिव बाबा, दिखेगा तो बूढ़ा बाबा ना। पढ़ाने कौन आता है और पढ़ा के क्या देता है? वर्षा नहीं, और कुछ बोलो भाई। अच्छा बोल रहे हैं, माताओं को क्या हो गया आज? कलश भाइयों को दे दिया क्या? बोलो क्या देता है पढ़ाकर? देखो भारत में आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस जानते हैं ना भाई लोग, तो ये बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए एग्जाम्स होते हैं हर साल। जैसे ही एक व्यक्ति का, लड़के या लड़की का सिलेक्शन होगा आईएएस के लिए, क्या हो जाता है? चाल ही बदल जाती है। कलेक्टर बनेंगे अभी ठहर के, लेकिन सिलेक्शन होते ही लगता है कलेक्टर बन गया। नशा होता है ना। और हमारी पढ़ाई किसके लिए है? अरे नहीं, छोटी बात बोल रहे हैं आप, विश्व की बादशाही पाने के लिए। सोचो कैसी चाल होनी चाहिए, कैसी? माताओं से उत्तर नहीं आएगा, भाई बता सकते हैं। कैसी चाल होनी चाहिए? सम्राट जैसी, विश्व महाराज जैसी। माताओं को बनना है या नहीं? कैसी चाल होनी चाहिए? विश्व की बादशाही के लिए पढ़ाई। ये बाबा कहा करते थे, आंख खुली और देखो बाबा तुम्हारे लिए ताज और तिलक लेकर खड़ा है, आह्वान कर रहा, आ जाओ लो ये तुम्हारे लिए है। ये ब्राह्मण जीवन है, आंख खुलते ही श्रेष्ठ भाग्य। भाग्य ने हमारे करवट बदली है, सो गया था भाग्य, जग गया है। जगा है भाग, जग गया है। बाबा जब गीत बजता था ना, तकदीर जगा कर आई हूँ, तो प्रश्न पूछते थे जगा कर आई हूँ या जगाने? कई लोग कहते थे जगाने आए हैं। नहीं, बाबा का बनते ही तकदीर जग गई है। अब तो तकदीर को महान बनाना है, लेकिन वो जग गई, अब वो चलेगी, तेज चलेगी, उड़ेगी दौड़ेगी। हम बहुत भाग्यवान हैं, जीवन जीना सीख लिया। सीखा या नहीं? आता नहीं लोगों से जीवन जीना, परेशान रहते हैं जीवन में। खुशी लेकर आया बाबा हमारे लिए, वरदान लेकर आया है, सुख लेकर आया है, सफलता का वरदान लाया है, शक्तियां लाया है, ये सब हमारे श्रेष्ठ भाग्य हैं। तो उठते ही याद करेंगे मैं, अब अलग अलग शब्द बोलो, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, मैं मेरे जैसा भाग्यवान, और इस पढ़ाई का नशा हो जाए। पढ़ाई छोटी चीज नहीं है ये हमारी, आप सारे संसार का मनोविज्ञान पढ़ लो और बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ो, आपको लगेगा कि जो बाबा ने कहा वो संसार के इन मनोवैज्ञानिकों को पता भी नहीं है। ऐसी महान पढ़ाई, सब बुजुर्ग माताएं बिना पढ़ी लिखी माताएं भी पढ़ रही हैं। बोलो, सोफे पे बैठी हुई बिना पढ़ी लिखी माताएं पढ़ रही हैं? सो तो नहीं गई माताएं, नशा हो जाए जरा। गॉडली स्टूडेंट हैं, बाबा सिखाता था ना माताओं को, रास्ते में कोई पूछे डायरी पेन लेके चलो, कोई पूछे रास्ते में कहाँ जा रहे हो, गॉडली यूनिवर्सिटी में, कहेंगे वाह देखो बूढ़ी गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली है। होगा नशा या नहीं? नशा हो जाएगा। तो सवेरे उठते ही अपने को चार्ज करेंगे, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बड़ा बना दिया बाबा ने हमें, याद दिला दिया, जगा दिया, तुम पूर्वज हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बहुत बड़ी स्मृति दिलाई, जगाया है हमें। सब अपने को जगाया करें रोज, भाई थोड़ा पंखा चला देना, सब अपने को रोज जगाया करें, अपने को जगाना है, समझते हैं ना, जगाना माना श्रेष्ठ स्मृतियों से अपने को भरपूर करना, ताकि हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जग जाएं, सोई हुई चेतना जग जाए, सोया हुआ देवत्व जग जाए, तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ को सरल करने का पहला सुंदर तरीका है स्मृति स्वरूप, याद दिलाए अपने को कौन मैं। जैसे याद आएगा तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो और भविष्य स्वरूप भी हमारा हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे। फॉलो फादर करना है हमें। बाबा के साथ क्या हुआ था, ब्रह्मा बाबा के साथ, उन्हें बता दिया था शिव बाबा ने कि तुम जाकर श्री कृष्ण बनोगे, तुम वही आत्मा हो। स्मृति आ गई, एक सेकंड लगा था, ज्यादा नहीं, शिव बाबा को बार बार नहीं बताना पड़ा था, एक ही बार, तुम वही हो, ये और ये देख लो ये है, एक सेकंड में नशा चढ़ गया। इतना नशा चढ़ा कि देखने वाले को बाबा की जगह श्री कृष्ण दिखाई देने लगे, ये बहुत हो गया था तब। ये नशे से, स्मृति से हमारा स्वरूप बनने लगता है। जितना जो श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे वही स्वरूप उनका बनने लगेगा, और अब जो समय आ रहा है साक्षात्कार का, वही साक्षात्कार उनके द्वारा दूसरों को होने लगेंगे। आपने अभ्यास कर लिया बहुत, मैं अस्त भुजाधारी दुर्गा देवी हूँ, मैं वही हूँ, ये मेरी यादगार है, आपको रियल नशा चढ़ गया। एक है रिपीट करना केवल, दूसरा है इसको अंदर में समा लिया, ये मेरी यादगार है, तो क्या होगा आगे चल के, वही आपका स्वरूप दूसरों को दिखाई देगा। जो भी ये कर ले, इसमें जरूर नहीं वो समर्पित टीचर हो या घर में रहने वाली माताएं हो, जो कर ले वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो संगम युग बहुत महान, और हमें महान बनाने के लिए भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुआ है। अब इसका फायदा सबको उठाना है, सब चिंतन करेंगे। बाबा की कल की बात सुन के बाबा ने याद दिलाया, और आपने सुन ही लिया होगा, रतन मोहिनी दादी सुना रही थी, कल परसों सवेरे से उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया था कि बाबा ने ये कहा है कि पावरफुल वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं। हम तो थोड़ा थोड़ा रहस्य समझ गए थे, और फिर गुरुवार था, भोग लगा जब बाबा को, तो बाबा ने जो संदेश दिया तो संदेश से हम तो बिल्कुल समझ गए क्या है। बाबा ने कहा सभा में भक्त भी आए हैं और बच्चे भी आए हैं। बाप तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, भक्ति में भी करते आए तो अब भी करेंगे। हम समझ गए कि इस सभा में बहुत आत्माएं वो आ गई हैं जो ज्ञानी नहीं हैं। बहने ले आती हैं, चलो भगवान आता है तुम भी देख लो एक बार। लेकिन ज्ञान में चल पड़े तो अच्छा है, कोई 7 दिन का कोर्स करके आ गए, कोई बिना कोर्स किए ही आ गए। चलो तुम्हारी तो माँ ज्ञान में है ना बहुत समय से, तुम्हें तो पता ही है, तुम भी गंगा स्नान कराओ। तो हम समझ गए कि ऐसी बहुत आत्माएं आई हैं, और जब जब ऐसा होता है बाबा आते नहीं हैं, क्योंकि बाबा को भी हमारे वाइब्रेशंस खींचते हैं ना। सवेरे से हम बहुत प्यार से उन्हें याद करते हैं तो वो रह नहीं सकते ऊपर, आकर्षण होने लगता है उन्हें। जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा ना, बच्चे दुखी होकर पुकारने लगे तो बाप को ऊपर बेचैनी हो गई। चलूं, अब फिलोसोफिकली कोई सोचे तो कहेगा भगवान को बेचैनी, क्या गप लगा रहे लोग, पता नहीं कौन बोल रहा है। उन्हें क्या पता कि वो बाप है और प्यार का सागर है और अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकता। ये केवल हम समझ सकते हैं जिन्होंने बाबा से अपना नाता जोड़ा है। तो अब भी जब बहुत प्यार से उसे आत्माएं खींचती हैं तो वो खींचा चला आता है। इसी के लिए मैंने कहा कि कुछ ही समय में मधुबन में शांतिवन में ये सबको आभास होगा बाबा यहाँ है। केवल बाबा कमरे में नहीं, यहाँ दिखने भी लगेगा बाबा घूमते हुए, जैसे तब दिखता था। आपको तो पता नहीं होगा जब बाबा व्यक्त हुए, उसके बाद बहुत को दिखता था बाबा घूम रहा है। तो हम सभी अपने संगम योगी जीवन को महत्व दें, सब विचार करेंगे बहुत गहराई से, मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना कि इस जीवन में पता नहीं कितने साल बचे हों किसी के लिए, कोई कल चल दे, कोई 1 साल में चल दे, बुलावा आ जाए किसी का 2 साल में, चलो हमें पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है। यही समय है जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। बाबा से जो चाहे ले लें। देखो क्या क्या मनुष्य को चाहता है हर जन्म में, विचार कर लो जरा, क्या क्या चाहता है एक मनुष्य को हर जन्म में, बोलो। मैं उदाहरण दे देता हूँ, अच्छा तन, बोलो आगे, मन तो अच्छा, अलग धन अच्छा, बुद्धि अच्छी, स्वभाव संस्कार अच्छे, तब तो सुख रहेगा ना जीवन का। स्वभाव खराब हो, पैसा बहुत हो, लड़ते रहे, मजा नहीं आएगा। बुद्धि बहुत श्रेष्ठ, पद पोजीशन बहुत अच्छा, परिवार बहुत सुंदर, यही चाहिए ना जीवन में, ये सब चाहिए। और ये सब कुछ हमारे पास 2 युग तक तो बहुत रहेगा, 3रा युग भी बहुत रहेगा, 4था युग भी आधे तक बहुत सुंदर रहेगा, आधे के बाद गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अब देखो आप, बुद्धि सबको पता अपने जीवन में, बचपन से जब हमने पढ़ाई शुरू की, जिसके पास बुद्धि बहुत अच्छी थी उसका कैसा था, और जिसके पास बुद्धि बहुत कम थी उसका कैसा था। जिन बच्चों के पास बुद्धि कम है, परीक्षा आने लगी है, आने लगेगी, अब क्या होगा, उनको डर लग रहा है, अरे परीक्षा है, एग्जाम होने हैं, मम्मी नींद नहीं आती मुझे तो, डर लग रहा है। और जो बहुत होशियार हैं, वेलकम, परीक्षाओं को वेलकम, परीक्षा होंगी तभी तो पता चलेगा हम कितने होशियार हैं, वो इंतजार करते हैं। बुद्धि, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, मजा आएगा ना, और कम बुद्धि है तो कोई भी आपको ठग के चला जाएगा। आप बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, आप अपनी जिम्मेदारी को एंजॉय करेंगे, और बुद्धि अच्छी नहीं है तो जिम्मेदारी टेंशन बन जाएगी। बुद्धि का पूरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है। लोग तो कहेंगे धन भी कम हो चाहे, लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी हो तो भी कोई कमी नहीं रहेगी। अब ये बुद्धि अच्छी कहाँ से मिलेगी हमें? संगम युग पर बाबा बुद्धि देने आया है। भक्ति में सभी माताएं अपने बच्चों के लिए बुद्धि मांगती थी, अपने लिए नहीं, बच्चों को अच्छी बुद्धि दे दो। अब देने आ गया है, कैसे बोलो, आप जानते हैं सब, ज्ञान। ज्ञान से ही विवेक बढ़ता है, ज्ञान विजडम में बदल जाता है, ज्ञान विवेक शक्ति में बदल जाता है, और विवेक शक्ति के आधार से ही बुद्धि का निर्माण है। जिसके पास विवेक बहुत वो बुद्धिमान। तो बाबा हमें श्रेष्ठ ज्ञान देकर सद्विवेक दे रहा है, हमारी बुद्धि का निर्माण कर रहा है। हम अपनी बुद्धि का निर्माण यदि श्रेष्ठ करना चाहते हैं तो पहला सुंदर काम क्या करें? हाँ ठीक बोल रहे, बुद्धि को स्वच्छ करें। जिस बुद्धि में दो चीज बैठ सकें, कल की मुरली में भी था जो चली से हमको, जिनकी बुद्धि स्वच्छ होगी, एक तो बाबा उसमें बैठेगा, दूसरा कौन बैठेंगे बताओ, किसी को आता है ख्याल में? दूसरे उस बुद्धि में वरदान बैठ जाएंगे, और तीसरा बुद्धि धारणा शक्ति है, उसमें सारी शक्तियां धारण हो जाएंगी। और जिसकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, जिसने अपनी बुद्धि को भर के रखा है, व्यर्थ से भर के रखा है, दुर्भावनाओं से भर के रखा है, उसकी बुद्धि में न बाबा बैठेगा न उसकी बुद्धि का श्रेष्ठ निर्माण होगा। और जैसी बुद्धि हम यहाँ बना लेंगे, वही बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। बुद्धि त्रेता युग के बाद वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो द्वापर कलयुग अंत तक हमारे साथ चलेगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करना, दिव्य बुद्धि प्राप्त करना, रिफाइंड बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, ये सब हमें प्राप्त करनी है। इसको आप लक्ष्य बनाएं अपना, कि हम बुद्धि में अब वो सब न भरें जो खराब है। एक संकल्प दे दें अपने को, मेरी बुद्धि सोने का बर्तन है। बाबा कहता है बुद्धि को सोने का बर्तन बनाओ, हम कह रहे हैं आपको क्या, मेरी बुद्धि सोने का बर्तन है, अब इसमें मैं कूड़ा थोड़ा ही डालूंगा। आपके पास सोने का गिलास हो, चाय भी नहीं पियेंगे उसमें, अच्छी नहीं लगेगी चाय के लिए तो कप है इतना बड़ा, मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, चश्मा मुझे दूसरा चाहिए, लास्ट लास्ट में। तो नहीं भाई, ये तो बहुत छोटे अक्षर हैं तुम्हारे, ये अलग से मेरे से मिल लेना। तो बुद्धि हमारी सोने का बर्तन है, किस किस की है, हाथ उठाएंगे जिसकी है, ना ना मैं देख रहा हूँ, कुछ सोचने में पड़ गए, हमारी सोने की है या पीतल की है या चांदी की है, सोच लो, स्वीकार कर लें सभी, मेरी बुद्धि सोने का बर्तन है, अब इसमें मुझे क्या नहीं भरना है, अभी आप देख लेना क्या नहीं भरना है। पर हम गलती से क्या क्या भरते रहते हैं, कई लोगों ने तो किचरे को ही खजाना माना हुआ है, कूड़े वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, वो जो कूड़ा उड़ा बेचते हैं, इकट्ठा रखते हैं, कबाड़ी कबाड़ी उनके लिए खराब माल भी खजाना होता है, कईयों ने ऐसा समझ लिया है कि ये भी खजाना है, परंतु ये कुछ नहीं है, इससे अपने को बचाना है। तो बुद्धि का निर्माण हो रहा है संगम युग पर, अच्छी हेल्थ, क्या बाबा के महावाक, योग से हेल्थ, जो जितना अच्छा योग करेंगे उतनी अच्छी हेल्थ रहेगी, तीन युग तक, तीन युग की गारंटी है। अच्छा धन किसको मिलेगा, ज्ञान धन से जो भरपूर होंगे, केवल सुनने और सुनाने तक नहीं, ज्ञान को धारण करने तक, और जिन्होंने यहाँ बाबा की सेवाओं में धन लगाया होगा। अच्छा परिवार किसको मिलेगा, ये प्रश्न गहरा है जरा, जन्म जन्म में आपको अच्छा परिवार मिले, चलो सोच लेना और विचार कर लेना, ठीक बोल रहे हैं आप। देखो ये हमारा परिवार है ना, जो इस परिवार में प्यार से रहेंगे, परिवारों में सबसे पहली जरूरत होती है प्यार की, जो इस परिवार में प्यार से रहेंगे उन्हें जन्म जन्म प्यार मिलेगा परिवारों में, जो इस परिवार में एक दूसरे का सहयोग करेंगे उन्हें हर जन्म में परिवारों में सहयोग प्राप्त होगा। आजकल क्या होता है, लोग सहयोग नहीं करते एक दूसरे को, ऐसे ही सब चीजों पर ध्यान दें, इस संगठन में, इस विशाल परिवार में जो अच्छे वचन बोलेंगे, सुख देंगे, उनको जन्म जन्म परिवारों में अच्छे वचन सुनने को मिलेंगे, तो सुख रहेगा, एकता रहेगी। तो इस सुंदर परिवार में जिस तरह हम रहते हैं उसका इफेक्ट जन्म जन्म चलेगा। जैसे बाबा ने पीछे एक बहुत हंसी की बात और रहस्य भरी बात कह दी थी, मैं यहाँ सुनाता रहता हूँ, जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते। इस देवियों के कभी होंगे कभी नहीं, दीपक जलाएगा कोई गृहस्थी ही जाके, वे देवी के मंदिर में दीपक जला दें, सफाई करने वाला, देवी को वस्त्र बदलने वाला, नहलाने वाला कोई नहीं, क्योंकि अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। ये रहस्य बाबा बताते हैं। कभी बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात है ये भी, कई बच्चे कहते हैं हमारे दिल में तो एक बाबा के अलावा कोई नहीं, बाबा ने कहा था अगर छाती खोल के दिखाएं तो बाबा ही निकलेगा, इतना प्यार है हमारा बाबा से। लेकिन इसके बाद दूसरी लाइन भी बोली, अगर परिवार से प्यार नहीं है तो बाप इस प्यार को स्वीकार नहीं करते। सीधा भगवान से तो बहुत प्यार, लेकिन नीचे वालों से लड़ाई, तो वो कहेगा ये सब मेरे ही तो हैं नीचे वाले, तो मेरे से ज्यादा नीचे वालों को प्यार करो, वो प्यार मुझे पहुंच जाएगा। तो रचना से प्यार, भगवान के सभी बच्चों से प्यार, ये परम आवश्यक है। तो सुंदर परिवार चाहिए, उसके लिए एक बात और, श्रेष्ठ चरित्र यहाँ पर बनाए अपना, और श्रेष्ठ चरित्र का अर्थ है श्रेष्ठ प्योरिटी, प्योरिटी जिनकी श्रेष्ठ होगी उन्हें जन्म जन्म परिवारों में चरित्रवान आत्माओं का साथ मिलेगा। पद पोजीशन बहुत अच्छी हो, क्या चाहिए इसके लिए? हर जन्म में सिर पे ताज आ जाए, 84 जन्मों में से बहुत सारे जन्म राजा रानी के रूप में मिल जाएं, क्या चाहिए? शक्तियां, ताज माना पावर। जिन्होंने बाबा से बहुत पावर ले ली उनके सिर पर ये ताज आएगा, अनेक बार पावर मिलेगी उन्हें, सत्ता पद मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, गरीबी से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो इस जन्म में जन्म जन्म के लिए सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। और इस जन्म का सबसे बड़ा जो भाग्य है जिस पे आप सभी बहुत चिंतन करें, मैं भी बहुत चिंतन करता आया हूँ और मैं साफ कह दूं मुझे ये बात गहराई तक ले जाने में बहुत साल लगे अपने अंदर, इसलिए मैं आपको अब जल्दी करा देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा भाग्य हमें मिला है भगवान पर अधिकार, जो भी इसको रियलाइज कर ले, अधिकार से उसे यूज करना, अधिकार रखना भगवान पर, वो हमारा है। इसके लिए ये जरूरी है वो हमारा है, तो बहुत बड़ी प्राप्तियां हो जाएंगी, बहुत मदद मिल जाएगी उसकी, और आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा वरदान होगा, जिसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि तुम बस कहोगे बाबा, मेरा बाबा, और बाबा को अपने सामने आसपास देखोगे, फिजिकली देखोगे, स्थूल रूप में दिखाई देने लगेगा, बाबा की उपस्थिति महसूस होने लगेगी। और बाबा की उपस्थिति होना माना सभी संकट, सभी दुविधाएं फटाफट समाप्त। तो सभी चिंतन करेंगे हम क्या हैं, हैं महान या नहीं, नशा चढ़ा या नहीं, नहीं तो और चढ़ाएं, चढ़ा चढ़ गया तुम्हें सबसे ज्यादा, तुम्हें बहुत चढ़ गया, छोटों को जल्दी चढ़ता है ना, वही इनकी स्वच्छ बुद्धि है, और जिन्होंने माल बहुत भरा है बुद्धि में उनको जरा देर में चढ़ता, क्योंकि और नशे बहुत चढ़े हुए हैं ना। अपना भविष्य स्वरूप सामने आ सकता है, इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। पहला जन्म मेरा ये है, बिल्कुल सामने, जिसको बाबा कहते रहे कि ऐसी प्रैक्टिस करो कि सामने दो खूंटियों पर, एक पर फरिश्ते की ड्रेस, दूसरे पर देवताई ड्रेस, देवताई ड्रेस माना शरीर टंगे हुए हैं, ये पहन लिया, ये पहन लिया, बिल्कुल इजी। इस ड्रेस से निकले फरिश्ते की ड्रेस, उससे निकले देवताई ड्रेस, देह शरीर बिल्कुल सामने अपने खड़े करने लगो, ब्रह्मा बाबा की तरह, जैसे बाबा को श्री कृष्ण सामने दिखने लगा था, लोग साक्षात्कार करते थे और उनको आंखों के सामने दिखाई देता था, मैं ही हूँ, ये था मैं, इतना महान जिसे सारे भारत में लोग भगवान ही मानते हैं वो मैं। तो हमें भी ऐसा ही अपना भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। बनाओ सभी एक पिक्चर अपनी अपनी भविष्य की, सिर पे क्या होगा? डबल ताज। बैठे कहाँ होंगे? धीमे बोल रहे हैं। सिंहासन पे बैठे होंगे? विश्व राज्य अधिकारी सिंहासन पर विराजमान, चारों ओर सोने के महल, हीरे जड़ित चमक रहे हैं, बड़े बड़े हीरे, उनसे प्रकाश फैल रहा है। रात का सीन इमेज करो, रात है और महलों में हीरे जड़े हैं, उनकी लाइट फैल रही है, बाहर की लाइट जलाने की जरूरत नहीं, हम अपने देव स्वरूप में चारों ओर देखो, प्रकृति का सौंदर्य, हवाओं में भी सुगंध है, चारों ओर प्रकृति ऐसी चमक रही है, ऐसा सौंदर्य है कि आत्मा आनंदित हो रही है। अपने उस स्वरूप को देखो, ये मैं, अपने को फीलिंग दे, ये मैं संपूर्ण पावन। चेहरा देखो अपना वहां, आपका कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, उनके चेहरे के सामने कुछ नहीं, तेजस्वी चेहरे, कंचन काया, ये सब अपने सामने लाएंगे, बहुत आनंद आएगा। तो कल सवेरे सबको ये प्रैक्टिस करनी है, सवेरे भी और शाम भी 5-5 बार करेंगे। मैं आत्मा इस देह में हूं, इस देह से निकलकर फरिश्ते की देह में चली गई, फरिश्ता बन गए, ऐसे ही फरिश्ते का स्वरूप भी सामने क्लियर, प्रकाश की काया, काया से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, बहुत डिवाइन है, हम दिव्य धरती से ऊपर हैं, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, फिर उस देह से निकले अपने इस देव स्वरूप में, फिर उस देह से निकले अपने ब्राह्मण स्वरूप में। ये प्रैक्टिस सभी को बहुत अच्छी तरह से करनी है। और मुझे एक संकल्प है, कल की मुरली से बाबा ने कहा ना कि बाबा की इच्छा है सभी सेंटर ही बने, आपके घर भी। मैं चाहता हूँ, बाबा चाहते ही हैं, सबके घर निर्विघ्न बने। और घरों से पहले कौन निर्विघ्न बने? हम निर्विघ्न तो हमारे स्थान निर्विघ्न, और निर्विघ्न बनने के लिए कुछ थोड़ी सी बातें याद रखनी है, उन पे आपको चिंतन करना है, याद दिलाना, अगली बार क्लास कराएंगे छोटे लाल। निर्विघ्न जीवन, निर्विघ्न परिवार, हमारा घर निर्विघ्न। पहली चीज सरल चित्त, जो बहुत सरल चित्त हैं उनके विघ्न भी सरल हो के समाप्त हो जाते हैं, बहुत सरल चित्त। दूसरी चीज बहुत अच्छी प्योरिटी, इम्प्योरिटी विघ्नों का आह्वान करती है। तीसरी चीज विचार बहुत महान, महान आत्माएं तो विचार महान, जिनके विचार छोटे होते हैं वो हर बात को विघ्न समझ लेते हैं, बहुत विघ्न है। किसी को फीलिंग बहुत आती है, उसे लगता है किसी के साथ रहना भी बहुत कठिन है, बड़े विघ्न है मेरे जीवन में, और विघ्नों का एक ही कारण होता है फीलिंग। विचार महान होने से, जिसको बाबा कहते हैं तुम बड़े हो गए तो ऊपर से नीचे की चीज कैसी दिखती है? बहुत छोटी। ये सब बातें तुम्हें छोटी दिखाई देंगी, तुम पूर्वज और ये बच्चों की छोटी बातें। दूसरा, चौथा, विघ्न पड़ते हैं अपने गलत संस्कारों के कारण। विघ्न डालता है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के परिवार में उसका क्रोध और अभिमान, जो घर घर में विघ्न है आज, उनके ये दो प्रमुख कारण, क्रोध का संस्कार, अभिमान का संस्कार। मेरे पास परिवार आते ही रहते हैं, अब भी नीचे तो युगल आए और उन्होंने भी आते ही कहा हम दोनों बहुत लड़ते हैं, तो मैं हंसी में कहा, मैं कहा लड़ते रहो आनंद आता रहेगा, कहा नहीं बाबा के बन गए लड़ना नहीं चाहिए, तो आप इन पे अच्छी तरह विचार करना और कल ये अभ्यास करना।